तट, तट नदी, तालाब, समुद्र अथवा किसी जलाशय के किनारे को कहते हैं। तीर, पानी को छूती हुई जमीन। तरनी, इसका अर्थ सूर्य से होता है। तरनी, इसका अर्थ नौका होता है। तीव्र, किसी गुण को अत्यधिक मात्रा या किसी प्रक्रिया में अत्यधिक गति का भान कराने के लिए तीव्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे तीव्र पीड़ा, तीव्र प्रकाश, तीव्र गति, तीव्र गंध, तीव्र विरोध आदि। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का प्रयोग तीखे, पैने आदि के अर्थ में होता है। इसमें गहराई तक पहुंचकर प्रभावित करने की शक्ति होती है, जैसे तीक्ष्ण ताप, ऐसा ताप जो आधिक्य की ऐसी अवस्था में हो जो असहाय हो। तीक्ष्ण वचन, ऐसे वचन जो सुनने में अप्रिय हो। तीक्ष्ण तीव्र से अधिक प्रभावशाली शब्द है। दयनीय, दयनीय शब्द दया से बना हुआ विशेषण है। इसका शब्दार्थ है जिस पर दया आती हो। यह विशेषण ऐसे व्यक्ति अथवा अवस्था, दशा और स्थिति के लिए प्रयुक्त होता है जो स्वयं हमारे मन में दया उत्पन्न करके सहायता की भावना को जन्म देती है। दयनीय शब्द में प्रमुख भाव दया का होना है। सहायता की प्रेरणा का भाव गौण ही है। दयनीय वह होता है जो अच्छी स्थिति से गिरकर बुरी स्थिति में पहुंच गया हो। दयापात्र, दयापात्र वह व्यक्ति है जो अपनी दुर्बलता, त्रुटि आदि के कारण सबकी दया का विषय हो। शोचनीय, शोच हमारे मन का वह भाव है जो किसी दुर्दशा या दुरावस्था के प्रति कष्ट, चिंता, दया, सहानुभूति आदि भावों से युक्त होता है। शोचनीय वह दशा है जिसे देखकर मन में शोच उत्पन्न होता है। तीनों में अंतर, दयनीय व्यक्ति भी होता है, दशा या अवस्था भी दयापात्र केवल व्यक्ति होता है, जबकि शोचनीय सदा अवस्था या दशा ही होती है। दया, किसी के कष्ट को देखकर उसका कष्ट कम करने का प्रयत्न दया कहलाता है। दया अभाव, विषय, परिस्थिति, दोष आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। दया में मंगल कामना अवश्य होती है। कृपया, साधारणतः दया के स्थान पर कृपा का भी प्रयोग किया जाता है, पर दोनों में अंतर है। दया अधीनस्थ है या छोटों पर होती है, पर कृपा बराबर वालों और छोटों के साथ होती है। कृपा का भाव सज्जनों का स्वाभाविक गुण है। राजदया, राजा या शासन की ओर से होने वाली वह दया जो विशिष्ट अवसरों पर दंडनीय अपराधियों को दी जाती है और वे दंड भोग से मुक्त कर दिए जाते हैं। अनुकंपा, किसी का संकट दूर करने का भाव उत्पन्न करने वाली अनुभूति अनुकंपा कहलाती है। इसमें दया करने का भाव प्रमुख है। अनुकंपा सदैव छोटे और दुर्बलों के प्रति होती है। करुणा, करुणा बहुत कुछ अनुकंपा ही है, पर इसमें सहायता अधिक होती है और सहानुभूति गौण। करुणा की भावना का जन्म बड़ों की आपत्ति या कष्ट देखकर भी होता है। सहानुभूति या सह प्लस अनुभूति योग से सहानुभूति शब्द बना है। इसका शब्दार्थ है वैसी ही अनुभूति का होना जैसी दूसरों को हो रही है। सह प्लस अनुभूति सुखद भी हो सकती है और दुखद भी। इसका जन्म गुण स्वभाव समानता से होता है। सहानुभूति के रूप में सह हृदयता को भी छाया पड़ती है। संकुचित अर्थ में सहानुभूति शब्द का प्रयोग कष्ट, विपत्ति, शोक आदि के अवसरों पर दुख प्रदर्शन मात्र तक होने लगा है। संवेदना, संवेदना शब्द का प्रयोग कष्ट, संकट, आपत्ति, दुख आदि के प्रसंगों में होता है। इस शब्द का अर्थ है किसी के शोक, दुख या हानि के प्रति सहानुभूति। सात्वना, सहानुभूति और संवेदना के वर्ग का ही शब्द है सात्वना। इसमें धैर्य धारण करने का परामर्श और कष्ट दुख निवारण का प्रयत्न प्रमुख होता है। सात्वना किसी को इस उद्देश्य से दी जाती है कि उसके मन में बड़े दुख का भार हल्का हो। क्षमा, क्षमा का प्रयोग अपराधकर्ता को दंड भोग से उदारपूर्वक मुक्त कर देने के प्रसंग में होता है। इसका प्रयोग अपराध, अवज्ञा, कर्तव्य च्युति, त्रुटि और दोष के प्रसंगों में होता है। मार्दव, मार्दव, रियायत और क्षमा एक ही वर्ग के शब्द हैं। हम दंड देने के समय किसी विशिष्ट कारण से किसी के प्रति मृदुता दिखाते हैं, वही मार्दव या रियायत है। अनुग्रह है, किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसकी भलाई करना अनुग्रह है। यह बहुधा सुपात्र के प्रति होता है। प्रसाद, प्रसाद शब्द का प्रयोग धार्मिक क्षेत्र में अधिक होता है। प्रसाद का शब्दार्थ स्वच्छता या स्पष्टता है, पर साधारणतः प्रयोग का अर्थ किसी की प्रसन्नता का सूचक तत्व है। यह प्रसन्नतापूर्वक कृपा का फल है। मंदिरों में बटने वाला प्रसाद देवताओं की प्रसन्नतापूर्ण कृपा का सूचक है। प्रसाद उस वस्तु, बात और काम का भी सूचक है जो प्रसन्न होकर उदारपूर्वक किसी के हितार्थ बड़े लोग करते या देते हैं। दुख, दुख ऐसा व्यापक शब्द है जो अपने वर्ग के सभी पदार्थों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अप्रिय, प्रतिकूल और हानिकारक बातें इसका कारण होती हैं। दुख मुख्यतः मानसिक होता है। कष्ट, कष्ट मुख्यतः भौतिक या शारीरिक बातों से संबंध रखता है। अभाव और असमर्थताएं कष्ट को जन्म देती हैं। कष्ट कठिन और विकट स्थितियों में होता है। कष्ट का प्रयोग मानसिक क्षेत्र में अंशतः समीचीन होता है। कष्ट मूलतः शारीरिक और गौण रूप में मानसिक है। कलेश, कलेश दुख का हल्का रूप है। कलेश सर्वांग में मानसिक है। यह ऐसी अवस्थाओं का सूचक है जो वेदना या व्यथा को जन्म देती है। खेद, मानसिक दुख का साधारण रूप खेद कहलाता है। साधारण सी अनुचित बात या भूल होने पर खेद होता है। खेद भूल या त्रुटि की स्वीकृति के फलस्वरूप प्रकट किया जाता है। गंभीर प्रसंगों में इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। पीड़ा, पीड़ा शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से शारीरिक और गौण रूप से मानसिक क्षेत्र में होता है। अधिक परिश्रम करने या चोट लगने से शरीर में पीड़ा होती है। हाथ पैर में पीड़ा होती है। दुर्व्यवहार से मन में पीड़ा होती है। वेदना, वेदना का प्रयोग सुखद और दुखद अनुभूतियों के लिए होता था, पर अब वेदना का प्रयोग दुखद अनुभूतियों के लिए होता है। मानसिक पीड़ा जब उग्र रूप धारण करती है तब वेदना कहलाती है। वेदना का प्रभाव स्थायी होता है। यह अभाव अथवा नियोग का फल होता है। व्यथा, यह रह रहकर मन में उठने वाली टीस व्यथा है। व्यथा वेदना से मिलती जुलती है। वेदना में अभाव खटकता है तथा व्यथा में अभाव के कारण टीस, विहलता या तर्पण पैदा होती है। विषाद, विषाद निराशाजनक मनोभाव है। विषाद मन की वह अवस्था है जो उद्देश्य अथवा अभिलाषा की आपूर्ति तथा भविष्य के संबंध में चिंता या उदासी छाने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। संताप, संताप वह भावना है जो वेदना या व्यथा के उग्र रूप धारण करने और स्थायी होकर कुछ समय तक मन में रहने के कारण उत्पन्न होती है। शोक, शोक सगे संबंधियों की मृत्यु या महापुरुष के निर्धन पर होता है। मृत्यु के अतिरिक्त इसका अन्य प्रसंग में प्रयोग अनुचित है। दुर्दम्य, इसका दमन करना कठिन हो। अदम्य, जिसका दमन ही न किया जा सके। नमस्कार, समवयस्क के अभिवादन के लिए नमस्कार प्रयोग का शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे मित्र नमस्कार, प्रणाम अपना से बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिए प्रणाम का प्रयोग होता है। अभिवादन मान मर्यादा विशिष्ट किसी भी वर्ण वाले मान्य पुरुष अभिवादन के पात्र समझे जाते हैं। आशीर्वाद अपने से छोटों के प्रति इसका प्रयोग होता है। नाती लड़की के लड़कों को नाती कहते हैं। पोता लड़के के लड़के को पोता कहते हैं। जैसे सुनने में आया है कि तुम्हारे पड़ोसी को पोता हुआ है। नारी, नारी शब्द का प्रयोग मनुष्य जाति की सभी स्त्रियों विशेषतः युवती तथा वयस्क स्त्रियों के संबंध में होता है। अबला। अबला शब्द का प्रयोग कहीं कहीं स्त्री के पर्याय में होता है। अबला नारी की दुर्बलता का सूचक है। पुरुष की तुलना में नारी कोमल और दुर्बल होती है, अतः इसी संदर्भ में इसका प्रयोग उचित है। कामिनी। कामिनी प्रेम करने वाली अथवा प्रेम की कामना करने वाली सुंदरी का वाचक है। बाला। बाला साधारणतः ऐसी स्त्री को कहते हैं जो व्यसंधि की अवस्था में हो, जिसकी अवस्था 15 से 17 वर्ष की हो। वामा। हिंदू समाज में वैदिक धार्मिक क्रियाओं में पत्नी बाईं ओर बैठती है या रहती है, अतः उसे वामा कहा जाता है। प्रिय मनोहर सुंदर पत्नी भी वामा की सूचक है। महिला। महिला का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में ऐसी नारी के लिए होता है जो उच्च वंशीय तथा शिक्षित हो तथा समाज में उसका आदर हो। स्त्री। स्त्री शब्द की उत्पत्ति सूत्री या सौत्री से हुआ है, जिसका अर्थ है प्रसव करने वाली, संतान उत्पन्न करने वाली। इस शब्द का प्रयोग सार्वजनिक रूप से संपूर्ण नारी जाति के लिए होता है। भामा। भामिनी। भामा या भावनी क्रोध करने वाली पत्नी को कहते हैं। श्यामा। श्यामा का शाब्दिक अर्थ है सांवली, परंतु 16 वर्षीय सुंदरी को श्यामा कहा जाता है। निंदा। लोकाचरण के विरुद्ध आचरण को प्रकट करने के लिए ग्रहित भाव को निंदा कहते हैं, जैसे अछूतो उद्धार के विरोधी सनातनी पंडित महात्मा गांधी की निंदा करते हैं। अपवाद। उन अनुचित आक्षेपों को जिसे समाज में निरअपराध व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो, अपवाद कहते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के संबंध में जन समाज में अनेक अपवाद प्रचलित हैं। अपयश। जब किसी संभ्रांत पुरुष के चरित्र पर कालिमा लग जाने से बदनामी फैलती है, तब उसको अपयश कहते हैं, जैसे सीता हरण के प्रसंग से रावण का अपयश आज तक बना हुआ है। कलंक। किसी के सुंदर चरित्र से जो मलिनता आ जाती है, उसकी संज्ञा कलंक की है, जैसे अपनी माता के मारने का कलंक परशुराम को लग ही गया है। नियत। इसका अर्थ नियत होता है, जैसे पांडवों के प्रति दुर्योधन की अच्छी नीयत नहीं थी, तभी तो उसने हर तरह से प्रताड़ित किया था। नियति। इसका अर्थ प्रारब्ध भाग्य होता है, जैसी उसकी नियति होगी वैसा उसका कर्म होगा। पृथ्वी। पृथ्वी पर रहने वाले पदार्थ। पार्थिव। मिट्टी से बना हुआ पदार्थ, जैसे निज पार्थिव सिद्धू पुरिनी सीता रानी और दिव्य फल रूप राजा राम बलिदानी। प्रशंसा। किसी के गुणों का यथेष्ट वर्णन प्रशंसा कहलाता है। जब हम किसी व्यक्ति के कार्य व्यवहार नम्रता शक्ति आदि को देखकर प्रसन्न होते हैं और उसका वर्णन दूसरों से करते हैं, तब वह प्रशंसा कहलाती है। गुणानुवाद। प्रशंसा और गुणानुवाद अर्थ की दृष्टि से एक ही है, परंतु साधारणतः गुणानुवाद में गुणों को बढ़ा चढ़ाकर भी कहा जाता है। गुणानुवाद बड़ों का किया जाता है, राजा के आश्रम में रहने वाले उसका गुणानुवाद करते हैं और भक्त लोग भगवान का गुणानुवाद करते हैं। बड़ाई। बड़ाई शब्द का बड़ा भाववाचक रूप है, किसी के बड़प्पन या अच्छाई के संबंध में प्रसन्न आत्मक बातें बड़ाई कहलाती हैं। बड़ाई प्राय बड़े लोगों द्वारा छोटों की जाती है, उसका उद्देश्य छोटों की अपेक्षाकृत बड़ा सिद्ध करना होता है। सलाघा। सलाघा का मूल अर्थ है भरोसा या विश्वास करना। जब हम किसी की कोई बात उसके लिए गर्व समझकर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सराहना के रूप में कहते हैं, तब उसे सलाघा कहते हैं। सत्वन। सत्वन का मूल अर्थ है प्रशंसा या सराहना करना। किसी बड़े की कीर्ति विस्तार के लिए हम जब जी खोलकर उसकी प्रशंसा करते हैं, तब वह सत्वन है। स्तुति। स्तुति और सत्वन प्राय व्युत्पन्न की दृष्टि से समानार्थी है, पर व्यवहार की दृष्टि से स्तुति प्राय धार्मिक क्षेत्र में देवताओं के गुणानुवाद के संबंध में प्रयुक्त होती है। परिस्थिति, परिस्थिति एक विशेष क्षेत्र का शब्द है। किसी राजा के राजसिंहासन पर बैठने के समय उसकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना की जाती थी, उसे परिस्थिति कहते थे। आगे चलकर राजाओं की घोषणाएं और व्याख्यान ही परिस्थिति कहलाने लगे। आजकल परिस्थिति वह है जो प्रशंसा कहलाती है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या उसके कार्य को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने रखना होता है। प्रेम, प्रेम अत्यधिक व्यापक शब्द है। ईश्वर प्रेम से लेकर काम शक्ति तक के क्षेत्रों में इसका विस्तार है। प्रेम का रूप सदैव पवित्र और शुभ होता है। प्रेम सदैव दो पक्षों की अपेक्षा रखता है। प्रेम रूप गुण आदि से होता है और सदा स्वार्थ रहित होता है। इसमें सुख और संतोष के अतिरिक्त कोई कामना नहीं की जाती। राष्ट्र, साहित्य, कला, संगीत आदि के प्रति होने वाले प्रेम भी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अनुराग, किसी विषय या व्यक्ति की ओर शुद्ध भाव से मन लगना ही अनुराग है। इसका प्रयोग प्राय अच्छे अर्थों में होता है। यह एक पक्षीय हो सकता है और द्विपक्षीय भी। आसक्ति, अनुराग का बड़ा हुआ रूप आसक्ति है। आसक्ति में मन किसी व्यक्ति या बात में लीन हो जाता है और शीघ्र अलग नहीं होता। आसक्ति पूर्वतः एक पक्षीय होता है। मोह, मोह मन की उस दशा का घोतक है जिसमें मनुष्य भ्रम के कारण सत्य को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। अनुराग के कारण जब हमारी बुद्धि पर ममत्व का आवरण पड़ जाता है तब मोह की उत्पत्ति होती है। व्यामोह, व्यामोह मन की उस स्थिति का वाचक है जिससे पकड़कर व्यक्ति इधर उधर भटकने लगता है और कर्तव्य मार्ग में व्युचित हो जाता है। प्यार और प्रीति, प्यार और प्रीति शब्दों का प्रयोग सामाजिक और सिंहारिक दोनों क्षेत्रों में होता है। इसमें अनुराग और स्नेह दोनों के तत्व होते हैं। प्रणय, प्रणय शुद्ध रूप सिंहारिक क्षेत्र का शब्द है। इसमें प्रेम का उत्कृष्टता, दृढ़ता और पुष्टता होती है। यह पुरुष नारी के उस प्रेम का सूचक शब्द है जो अनुराग और स्नेह से बहुत आगे बढ़ता हुआ है। मित्र भाव, मित्र भाव प्राय मैत्री का प्रदर्शक है। मित्र भाव में वैसा ही आचरण और व्यवहार किया जाता है जैसा मित्रों से होता है। लगन, लगन का प्रयोग मन की उस वृत्ति का सूचक है जिसमें मनुष्य एकाग्रित तथा शांत भाव से किसी काम या बात में लगता है। इसमें स्थायित्व और दृढ़ता होती है। सख्य, सख्य की स्थिति में साथ रहने पर मित्र या सौहार्दपूर्ण आचरण तथा व्यवहार किया जाता है। सद्भाव, सद्भाव में शुद्ध भाव मन में रहता है। मन द्वेष और विरोध रहित होता है। किसी व्यक्ति के प्रति मन में अच्छे भाव या विचार रखना सद्भाव है। सौहार्द्र, सौहार्द्र सदा उभय पक्षी होता है। दोनों पक्षों में समान सद्भाव होता है। इसमें एक दूसरे के मंगल का ध्यान रहता है। स्नेह, स्नेह शुद्ध सात्विक प्रेम का एक महत्वपूर्ण रूप है। स्नेह में वात्सल्य भावना प्रधान होती है। बड़ों का छोटों के प्रति सहज प्रेम स्नेह कहलाता है। प्रति द्वंद्वता, जब मनुष्य किसी दूसरी मानसिकता के साथ किसी का विपक्षी बनता है तब उसकी विपक्ष भावना को प्रतिद्वंद्वता कहते हैं। इसमें पूरी तरह से जलन का भाव रहता है। जैसे सीता को प्राप्त करने के लिए रावण ने रामचंद्र से प्रतिद्वंद्वता की थी। प्रतियोगिता, जब किसी व्यक्ति स्वस्थ मानसिकता के साथ किसी होड़ में लेता है तब उसकी भावना प्रतियोगिता कहलाती है। जैसे अरे भाई इस बार भी तुम्हारे साथ आईएएस की प्रतियोगिता परीक्षा दूंगा। प्रतिस्पर्धा, किसी के उत्कर्ष को देखकर बिना ईर्ष्या के साथ उस अवस्था को प्राप्त करने की भाव को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जैसे भाई मुझसे ईर्ष्या नहीं स्पर्धा है, तुम क्यों भूलते हो, मैं बराबर तुम्हारी अवस्था को प्राप्त करने के उद्योग में लगा रहता हूँ। प्रबल, प्रखर तथा प्रचंड, इन विशेषणों की सहायता से किसी वस्तु भाव या कार्य के स्वभावगत गुणों के उत्कर्ष का संकेत किया जाता है। प्रबल, प्रबल का अर्थ है अधिक बल से युक्त। जिस वस्तु भाव या कार्य के संदर्भ में प्रबल का प्रयोग किया जाएगा उसमें अन्य वस्तु भाव या कार्य के ऊपर हो जाने की प्रवृत्ति लक्षित होगी। जैसे प्रबल झंझा का अर्थ ऐसी तेज आंधी जिसके आगे कोई चीज टिक ना सका। प्रबल वेग यह एक ऐसा वेग है जिसे रोक पाना अत्यंत कठिन है। प्रबल आवश्यकता ऐसी आवश्यकता है जिसे सामने अन्य आवश्यकताएं गौण हो जाती हैं। प्रबल और सबल में सूक्ष्म अर्थी भेद है कि सबल होने के लिए बल युक्त होना अनिवार्य है, परंतु प्रबल होने के लिए अन्य सबल प्रतिद्वंदियों को धराशाही या परास्त कर देने की क्षमता अनिवार्य है। प्रखर प्रखर कुंठित और छीन का विपर्यय है। प्रखर पैनी वस्तु को कहा जाता है। प्रखर का मुख्य गुण यह है कि जिस वस्तु पर इसका प्रहार हो उसे यह काटता हुआ चला जाए। प्रखर धार ऐसी धार है जो स्पर्श मात्र से काट दे। प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति वह है जो किसी समस्या या उलझन का निदान तुरंत अपनी बुद्धि द्वारा खोज ले। प्रखर चिंतन ऐसा चिंतन है जिससे चैतन्य विषय की तह में जाकर तथ्य और सिद्धांत प्रस्तुत किए जाए। प्रचंड प्रचंड का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ किसी वस्तु भाव या कार्य में इतनी तेजी आ जाए कि वह विनाशकारी रूप धारण कर ले। प्रचंड प्रबल और प्रखर दोनों से अधिक उत्कर्ष अवस्था का द्योतक है। जैसे प्रचंड क्रोध क्रोध की वह अवस्था है जिसमें सर्वनाश कर डालने की प्रवृत्ति आ जाती है। प्रचंड आक्रमण ऐसा आक्रमण है जो शत्रु को तहस नहस कर दे। प्रसिद्ध प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से व्यक्तियों और घटनाओं के संदर्भ में होता है। साधारणतः इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि निर्दिष्ट व्यक्ति और वस्तु का नाम प्राय हर व्यक्ति जानता है और उसकी प्रशंसा करता है। प्रसिद्धि के लिए सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। सिद्धि का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति वस्तु आदि को उसके कार्यकलाप उपयोगिता महत्ता आदि को उत्कृष्ट कोटि में रखा जा सके। ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु की चर्चा का दूसरा नाम ही ख्याति है। ख्याति प्राप्त व्यक्तियों वस्तुओं और कृतियों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ख्याति प्राप्त व्यक्ति उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने ख्याति अर्जित कर ली है। विख्यात ख्याति का उत्कर्ष अथवा विख्यात है। विख्यात उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने ख्याति को अर्जित ही नहीं वरन उसकी ख्याति का प्रसार भी कर चुका है। जब व्यक्ति की कीर्ति विश्व में फैल जाती है तब उसे विश्व विख्यात कहते हैं। कीर्तिवान कीर्ति शब्द व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। कीर्ति में चर्चा के साथ ही स्तुति का भाव भी छुपा रहता है। व्यक्ति अपने आदर्श कृतित्व और गुणों के कारण कीर्तिवान होता है। यशस्वी इस शब्द का प्रयोग भी व्यक्तियों के संदर्भ में होता है। यशस्वी शब्द में प्रसिद्धि के साथ ही साथ महिमा वृत्ति होने का भाव भी निहित रहता है। यश की व्याप्ति और प्रसार सूर्य की रश्मियों की भांति होता है। यश उज्ज्वल है, कीर्ति का द्योतक है। साहित्य में यश का रंग श्वेत माना गया है। यशस्वी व्यक्ति आदर्श कृतित्व या कर्तव्य परायणता के कारण होता है। लब प्रतिष्ठ वह व्यक्ति है जिसे साहित्य कला शिल्प संस्कृति विज्ञान आदि किसी एक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा अध्ययन और कार्य के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। स्व नाम मध्यन ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने नाम से धन्य हो गया हो। भाव यह है कि जिसका नाम ही उत्कृष्टता का प्रतीक बन गया हो। प्रार्थना किसी विशेष इच्छा से प्रेरित होकर उसकी प्राप्ति के लिए की गई विनती। प्रार्थना सदैव बड़ों और सम्मान्य व्यक्तियों से की जाती है। निवेदन नम्र शब्दों से कोई कथन। प्रिय प्यारा प्रेमी सुंदर जैसे यह पुस्तक मुझे बहुत प्रिय है। प्रिया प्रियतमा प्यारी प्रेयसी भार्या पत्नी जैसे मेरी प्रिया कोई नहीं। पुलिन पुलिन किनारे के पास से भीगी भूमि। सेकत नदी के किनारे बालूदार भूमि। प्रेम हृदय के आकर्षण का भाव प्रेम कहलाता है। जैसे नायिका की देह यष्टि का आकर्षण नायक में प्रेम का भाव भर देता है। श्रद्धा बड़ों की कृपा में जो प्रेम उत्पन्न होता है वह श्रद्धा कहलाती है। जैसे गुरुजी की अध्यापन शैली में मैं इतना प्रभावित हूँ कि उनके प्रति मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। भक्ति इष्ट देव के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है वह भक्ति कहलाता है। जैसे माँ सरस्वती अनुपम पावनी भक्ति दीजिए। स्नेह छोटों के प्रति जो प्रेम होता है वह स्नेह कहलाता है। जैसे प्रत्येक पिता की अपनी पुत्री से स्नेह होता है। प्रणय स्त्री के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है वह प्रणय कहलाता है। जैसे स्त्रियों के प्रणय पास में आबद्ध होने के बाद निकल पाना दुष्कर कार्य होता है। अनुराग प्रेम की विशेषता का नाम अनुराग है। जैसे नहीं निष्फल मेरा अनुराग सिद्धि है स्वयं साधना भाग। बंधु आत्मीय जिसका वियोग सहन न किया जा सके अथवा जिसके बिना कार्य ना चले। सुहद बदले की आशा ना करके सदा उपकार करने वाला और सहमत रहने वाला साथी। भारी भारी मूलतः वह कहलाता है जिससे भार अधिक हो। भार का आशय तौल से होता है। विस्तृत अर्थ में भार आकार माप आदि का सूचक है। भार शब्द का प्रयोग कहीं कहीं मुश्किल और कठिनता के अर्थ में होता है। बड़ा बड़ा वह कहलाता है जो अपने क्षेत्र या वर्ग में साधारणतः औरों की तुलना में आकार महत्व भाव विस्तार आदि के विचार से बहुत कुछ आगे बढ़ा ऊपर उठा या उधर उधर फैला हो। बृहत बृहत शब्द का अर्थ बड़े के समान ही है। विशेष भाव में इसमें यह होता है कि बड़े की तुलना में यह बहुत बड़ा होता है। इसमें साधारण सीमा में बड़े हुए कोने का भाव मुख्य है। महत और महान शब्द की विशेषता यह है कि यह अंश मर्यादा योग्यता आदि की यथेष्ट अधिकता के सूचक शब्द हैं। इन शब्दों का प्रयोग अमूर्त भावनाओं के संबंध में या उनसे संबंधित व्यक्तियों आदि से होता है। विशाल विशाल का मुख्य अर्थ है आकार महत्व विस्तार आदि की दृष्टि से बहुत बड़ा। यह ऐसा बड़प्पन है जो हमें चकित कर सके और हम जिसकी कल्पना शीघ्र ना कर सकें। बदनामी बदनामी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ किसी के नाम के संबंध में होने वाली निंदा है। बदनामी नीति या मर्यादा के विरुद्ध कोई काम करने पर होती है। जिसकी बदनामी होती है वह जनसाधारण के मध्य चर्चा का विषय बनता है। समाज में जो व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है उसे बदनामी का उतना ही अधिक भय रहेगा। अपवाद अपवाद का संबंध किसी कार्य या घटना विशेष से होता है। अपवाद क्षेत्र बदनामी की अपेक्षा कम विस्तृत होता है। अपवाद का प्रभाव अधिक होता है। अपवाद का सर्वमान्य होना आवश्यक नहीं। अपवाद के कारण सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी नहीं गिरती जितनी बदनामी के कारण। अपकीर्ति अपकीर्ति उसकी होगी जिसने समाज में पहले कीर्ति अर्जित की है। यह अनुचित कार्य करने पर होती है और पहले से चली आ रही कीर्ति के लिए घातक सिद्ध होती है। अपयश अपयश के लिए आवश्यक नहीं कि पहले से यश की प्रतिष्ठा में ही हो। संयोग और घटना चक्र के द्वारा भी अपयश मिल जाता है। कुख्याति बार बार बुरे काम करने पर समाज में फैलने वाली बदनामी को कुख्याति की संज्ञा दी जाती है। कुख्यात व्यक्ति निरंतर अनुचित काम करता है। भय डर की कोई वस्तु जब अपना प्रभाव हृदय पर जमा ले तब हृदय की उस अवस्था को भय कहते हैं। जैसे पूरे विश्व को आतंकवादियों का भय बराबर बना रहता है। डर बाहरी वस्तु किसी हानि की आशंका से हमें भयभीत करती है तब हमारी अवस्था डर की होती है। जैसे बेटे सो जाओ घबराओ नहीं प्रतियोगिता में तुम्हारी ही जीत होगी। आशंका जब भय निश्चय अवस्था में ना हो तब उसे आशंका कहते हैं। जैसे आशंका है संयुक्त राज्य ईरान पर भी आक्रमण कर दे। भ्रम वास्तविकता का ज्ञान होने के कारण जहाँ भ्रांति हो जाती है उसे भ्रम कहते हैं। जैसे बाबूजी कल मुझे उस बाग के पास सरसराहट होने के कारण सांप का भ्रम हो गया था। प्रसाद उन्माद और मूर्खता के कारण जहाँ भ्रांति होती है उसका नाम प्रमाद है। जैसे ककई का प्रमाद पुत्र भारत के लिए विशेष कष्टकर सिद्ध हुआ। भ्रांति असत्य धारणा संदेह अस्थिर विचार और संदेह के कारण वस्तु के निश्चय और सत्य स्वरूप का निर्णय नहीं हो सकता, संदेह ही बना रहता है। मर्त्य, मरने वाला, नश्वर। जैसे प्रत्येक प्राणी का शरीर मर्त्य है। मृत्यु, मार्ग दुर्घटना में 14 व्यक्ति की मृत्यु प्राप्त कर गए। जैसे नाथ, मेरी धी शक्ति की वृद्धि कीजिए। मति, इच्छा करने की कोशिश का नाम मति है। जैसे आपकी मति बिगड़ गई है, पहले इसकी दवा कीजिए, तब बातें कीजिए। मन, जिस शक्ति के द्वारा मनुष्य किसी बात को स्मरण रखता है, उस शक्ति का नाम मन है। जैसे मेरे मन की शक्ति में वृद्धि होती जा रही है। चित, जिस ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी विषय की जानकारी होती है, उसे चेतन शक्ति का नाम चित है। जैसे मेरे हृदय मंदिर में तुम्हारी श्यामली मूर्ति का आभास कब होगा। अंतःकरण, बाहरी इंद्रियों के संबंध रखने पर हृदय का नाम अंतःकरण हो जाता है। जैसे जब तक बाहरी इंद्रियां शांत नहीं होती, तब तक इष्ट की झलक अंतःकरण के पटल पर कदापि नहीं आ सकती। मंतन्ना, आधिकारिक स्तर पर जो गुप्त बातचीत हो जाती है, उसे मंतन्ना कहते हैं। जैसे कौटिल्य की मंतन्ना में वीरवर चंद्रगुप्त सम्राट पद पर आसीन हुआ था। परामर्श, अपने शुभचिंतकों से किसी विषय पर जो सलाह ली जाती है, उसे परामर्श कहते हैं। मित्र, किसी भी अवस्था का कोई व्यक्ति घनिष्ठ होने पर मित्र कहलाता है। जैसे भक्त वत्सल राम ने बलि के अत्याचारी से व्याकुल सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया था। सखा, संवेशक होने के कारण जो स्वाभाविक प्रेम होता है, वह सखा की कोटि में आता है। जैसे सुदामा कृष्ण के सखा थे। सुहद, जिस व्यक्ति का स्नेह वासना रहित होता है, जो सदा शुभकांक्षी तथा संवेदनशील हो रहता है, वह सुहद कहलाता है। जैसे जटायु राम का सुहद था। मुख, मुख चेहरा। जैसे गणेश का मुख हाथी का है। आमुख, पुस्तक आदि की भूमिका, नाटक की प्रस्तावना। जैसे मैं अपनी प्रत्येक पुस्तक में आमुख अपनों में अपनी शीर्षक से लिखता हूँ। मुख, मुंह, चेहरा। जैसे गणेश का मुख हाथी का है। आमुख, पुस्तक आदि की भूमिका, नाटक की प्रस्तावना। जैसे मैं अपनी प्रत्येक पुस्तक में आमुख अपनों से अपनी शीर्षक से लिखता हूँ। अज्ञ, जड़ बुद्धि वाले अज्ञ कहलाते हैं। जैसे कुछ वेश की भी लाज रखो, अज्ञता का अंत हो। मूर्ख, जिसे उचित अनुचित का ज्ञान ना हो, उसे मूर्ख कहते हैं। जैसे एक मूर्ख पिता निज अपने पुत्र को बुरी तरह से मार रहा था। मूढ़, अत्यंत मूर्ख। जैसे इसकी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। प्रतिमा, प्रस्तुत वर्ग के शब्द प्राय कल्पित अथवा यथार्थ व्यक्तियों के आकार और अनुकरण पर बनी हुई ऐसी प्रतिकृतियां हैं जो आदर भाव से धातु, पत्थर और लकड़ी आदि से प्रस्तुत की जाती हैं। बहुधा आराधन, पूजन आदि के लिए, प्रतिमा दर्शन के लिए और मूर्ति स्मृति बनाए रखने के उद्देश्य से बनता है। मौत, शरीरांत, मृत्यु, निर्धन। जैसे मौत जीवन का अंतिम सत्य माना गया है। मात, पराजय, हार। जैसे इस शतरंजी चाल में अब की बार तुम्हारी मात निश्चित है। यश, धर्म पथ पर चलने तथा अपने बाहुबल से जो ख्याति प्राप्त होती है, उसे यश कहते हैं। जैसे जब मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ राम ने जगत प्रख्यात विश्व विजेता राक्षस राज रावण का समूल विनष्ट कर डाला था, तब उनका यश प्रभाकर की भांति अपने प्रचंड किरणों को फैलाने लगा था। कीर्ति, दान करने से जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उसे कीर्ति कहते हैं। जैसे कीर्ति सुधा दिग भीति पखार चंद मरिचन को हरिकुची। यात्रा, यात्रा का मुख्य अर्थ है एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक जाना। इसका आशय है अपने निवास स्थान से किसी दूर के स्थान तक जाना। भ्रमण, भ्रमण का शाब्दिक अर्थ है चक्कर खाना। भ्रमण में कहीं से चलकर अनेक स्थानों में घूमते फिरते अपने अपने स्थान पर लौट आते हैं। भ्रमण स्व उद्देश्य और निश्चित होता है। भ्रमण का कार्यक्रम पूर्व निश्चित होता है। पर्यटन, पर्यटन शहर की दृष्टि से किया जाता है। इसमें दृश्य अवलोकन का भाव प्रमुख होता है। पर्यटन का कार्यक्रम पूर्व निश्चित नहीं होता। अभिज्ञान, अभिज्ञान सैनिक ढंग की एक विशिष्ट यात्रा है। अभिज्ञान निश्चित उद्देश्य से किया जाता है। अभिज्ञान सदैव विशेष कार्य के लिए किया जाता है। अभियान सदा पूरे दल बल सहित होता है। पिकनिक, गोठ, विहार, सैर। पिकनिक, गोठ, विहार, सैर का उद्देश्य मनोविनोद होता है। व्यस्त जीवन से कुछ समय के लिए छुटकारा पाने और आमोद प्रमोद के लिए पिकनिक, गोठ और विहार किए जाते हैं। पिकनिक में कुछ निश्चित लोग नगर के बाहर रमणीक स्थान में जाकर आनंद से कुछ समय व्यतीत करते हैं। प्राय खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं की जाती है। विहार एकमात्र का उद्देश्य बन जाता है। सैर, सैर का उद्देश्य किसी अच्छे स्थान को देखकर मन बहलाना है और अवकाश का समय व्यतीत करना है। सैर निकट के स्थान या दूर के स्थान में की जा सकती है। व्रजन, व्रजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना व्रजन कहलाता है। इसका भी उद्देश्य मनोविनोद या स्वास्थ्य सुधार होता है। यातना, आघात करने से उत्पन्न पीड़ा, प्राय शारीरिक पीड़ा जो दूसरों के द्वारा आघात किए जाने पर होती है, यातना कहलाती है। यंत्रणा, असहाय दुखों के भार का अनुभव। युक्ति, कार्य का हेतु दिखना युक्ति है। जैसे, अरे भाई, कुछ युक्ति तो बताओ जिससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो। तर्क, युक्ति की कसौटी तर्क है। जैसे, बेटे, ईश्वर तर्क से रहित है, अस्तु हमारे ऋषियों ने उसे अतर्क कहा है। वाद, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए युक्त प्रतियुक्त वाद है। जैसे, क्या वाद विवाद कर रहे हो, जाने दो। वितंडता, जल्प, स्वपक्ष स्थापन तथा परपक्ष निराकरण के कला विशेष को वितंडता जल्प कहते हैं। जैसे, तुम्हारे इस वितंडता जल्प से मेरा पक्ष खंडित है। राजभाषा, किसी देश अथवा राज्य के शासकीय कार्यों, न्यायालयों आदि में प्रयुक्त वहाँ की प्रचलित भाषा राजभाषा कहलाती है। जैसे, भारत के अधिकांश राज्यों में राजभाषा का ही व्यवहार होता है। राष्ट्रभाषा, किसी देश में प्रचलित वह भाषा जिसका व्यवहार उस देश के रहने वाले अन्य भाषा भाषी भी सार्वजनिक और पारस्परिक कार्यों में करते हैं, राष्ट्रभाषा कहलाते हैं। जैसे, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होते हुए भी अन्य भाषा भाषी अपने सार्वजनिक आयोजनों में अपनी ही भाषा का व्यवहार करते हैं। रात, सूर्य के अस्ताचल में जाने पर चारों ओर अंधकार छा जाता है। पुनः उदयाचल से निकलने पर प्रकाश हो जाता है। जब तक सूर्य अस्ताचल में छिप जाने के बाद उदयाचल पर दिखाई नहीं देता, तब तक की संज्ञा रात है। तमिस्त्रा, घनघोर काली रात्रि का नाम तमिस्त्रा है। राका, जिस रात में पूर्ण चंद्रमा विद्यमान रहता है उसको राका कहते हैं। जैसे, राका की शोभा राका पति पर निर्भर करती है। लज्जा, संकोच, दोष आदि के कारण दूसरों के सामने ना बोलने या सिर ना उठाने का मनोभाव लज्जा है। वाद, विवाद, तर्क, मुकदमा। जैसे, मैंने अपने घर वाले प्रकरण को लेकर अपने विद्यार्थियों पर वाद विवाद कायम करूँगा। अपवाद, प्रतिवाद, खंडन वह नियम जो व्यापक नियम में न आए, जैसे लोग भीड़ के पीछे भागते हैं पर मैं नहीं, तभी मैं इसका अपवाद हूँ। विज्ञता किसी विषय के किसी अंग का विशेष ज्ञान, पारंगत किसी विषय का पूर्ण ज्ञान। विज्ञान किसी विषय के सिद्धांतों का विशेष रूप से ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अभिज्ञान पहचान लक्षण अथवा स्मृति को अभिज्ञान कहते हैं। विप्र जो यजन याजन आदि कर्म पूर्ण रीति से कराता है वह विप्र कहलाता है। ब्राह्मण जो ब्रह्मा को जानता है वह ब्राह्मण कहलाता है। द्विज दो बार संस्कार द्वारा प्राप्त मनुष्य द्विज कहलाता है। विलाप दुख भरी बातें कहते हुए रोने का नाम विलाप है। बिलखना देह की दशा भूलकर चीख मार कर रोने का नाम बिलखना है। जैसे दुख प्रकाशन का कर्म नारी का अधिक था नर के अनुसार ही, पर विलाप कला बिसूरना बिलखना उनमें अतिरिक्त था। शंकर भगवान का यह नाम कल्याण करने के कारण से जान पड़ता है। भक्त जन कल्याण की इच्छा से भगवान शंकर का नाम याद करते हैं। रुद्र भगवान जितने दयालु हैं उतने ही कठोर भी। दुष्टों का दमन करते समय उनका सुंदर स्वरूप भीषणता के रूप में परिणित हो जाता है, जो रुद्र का रूप कहलाता है। नीलकंठ सारे प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने हलाहल विष का पान किया था और विष को अपने कंठ में रख लिया था, इस कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। आशुतोष भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाने के कारण भक्त उन्हें आशुतोष नाम से जानते हैं। दिग्वसन नंगे रहने के कारण उनका यह नाम पड़ा, इस नाम से उनकी त्यागशीलता का बोध होता है। मदनानीर कामदेव को जलाने के कारण उनका यह नाम पड़ा। सूर जो बहादुर रण क्षेत्र में शत्रुओं की मारों से तनिक भी विचलित नहीं होता, बल्कि और वीरतापूर्वक शत्रुओं का सामना करता है, मरता है अथवा मारता है पर रण क्षेत्र से भागता नहीं, उसकी संज्ञा सूर से की होती है। जैसे भीष्म पितामह बड़े सूर थे, रण में विचलित होने का तो वे नाम भी नहीं लेते थे। वीर जो संग्राम स्थल में अपनी बहादुरी दिखाता हुआ शत्रुओं का मान मर्दन करता है तथा समय पड़ने पर प्राण रक्षा के लिए रण क्षेत्र से भाग भी जाता है वह वीर कहलाता है। जैसे वीरवर कर्ण अर्जुन की बाण वर्षा से घबरा कर विराटपुर में रण क्षेत्र से भाग गया। श्रम ऐसा शारीरिक काम कहलाता है जो समाज की आवश्यकता पूर्ति हेतु चीजें बनाने के लिए किया जाता है। श्रम शरीर को थकाता है तथा अनिवार्य रूप से विवश होकर विश्राम करना पड़ता है। परिश्रम परिश्रम शारीरिक तथा मानसिक दोनों होता है। परिश्रम के लिए व्यवस्था अनिवार्य नहीं होती, परिश्रम के बाद विश्राम की आवश्यकता होती है। आयास आयास में लगातार कुछ परिश्रम करते रहने का भाव मुख्य है। इसका प्रयोग किसी विशेष कार्य के प्रसंग में ही होता है। उद्यम उद्यम सदा किसी शुभ महत्व के काम के लिए विशुद्ध या व्यक्तित्व खंड से होता है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण काम की सिद्धि या इष्ट फल की प्राप्ति होता है। उद्यमी व्यक्ति पूरी शक्ति से किसी काम में लगता है। उद्योग उद्योग भी किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया जाता है। इसमें कार्य सिद्धि का भाव मुख्य और परिश्रम का भाव होता है, यह प्राय उन कामों के लिए होता है। चेष्टा चेष्टा का प्राथमिक अर्थ काम करने के लिए हाथ पर हाथ हिलना होता है, इसमें शारीरिक दृष्टि से कुछ करने का भाव निहित होता है। संकोच जब मनुष्य का हृदय उदार नहीं होता और उसमें कुछ बनावट की मात्रा अधिक होती है, तब हृदय की इस अनुदार प्रकृति को संकोच कहते हैं। जैसे भाई खाने पीने में संकोच करना तुम्हें शोभा नहीं देता। लज्जा जो भाव उपयुक्त विवेक और शील की विरुद्धता पर वृत्तियों को नर्म होने की बाध्य करता है उसे लज्जा कहते हैं। जैसे अनुचित कार्य पर सबको लज्जा आनी चाहिए। संगठन मेल संयोग किसी कार्य के लिए बिखरी हुई शक्तियों को एक में मिलना, जैसे आज देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, हत्या, उपद्रव, आतंकवाद इत्यादि जघन्य अपराधों से निपटने के लिए स्वस्थ मानसिकता वाले एक संगठन की आवश्यकता है। समुदाय, समूह, झुंड, जैसे इस मेले में अनेक देशों के व्यक्तियों का समुदाय आया हुआ है। सज्जन, भला आदमी, शरीफ, अच्छे स्वभाव वाला, जैसे वह व्यक्ति कितना सज्जन है, लोग उसकी बुराइयां करते हैं पर वह शांत रहता है। साजन, प्रेमी, प्यारा, पति, स्वामी, जैसे मैं अपने साजन की हूँ और साजन मेरे। सभापति, सभापति का शब्दार्थ है सभा का प्रधान अधिकारी। किसी सभा के एकत्र होने पर सभा के कार्यों का ठीक तरह से संचालन करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने से पहले उपस्थित सज्जनों में से किसी योग्य व्यक्ति को सभापति चुन लिया जाता है। सभापति की आज्ञा, आदेश, निर्णय आदि सभी उपस्थित लोगों को मान्य होते हैं। कभी कभी सभा के संचालन के लिए विशेष रूप से सभापतित्व के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। अध्यक्ष, अध्यक्ष का सामान्य अर्थ स्वामी है, परंतु सभापति के अर्थ में भी सामान्यतः उसका ही प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः अध्यक्ष और सभापति में पर्याप्त अंतर है। पहला, सभापति किसी बैठक के आरंभ में वही और उसी समय चुन लिया जाता है। अध्यक्ष सामान्यतः किसी संस्था का ऐसा सभापति होता है जो किसी निश्चित अवधि के लिए संस्था के नियमों के अनुसार चुना जाता है। हर सभा और बैठक में सभापति का चयन होता है। अध्यक्ष किसी संस्था की हर बैठक का संचालन करता है। सभापति किसी सभा का अस्थायी अधिकारी होता है। अध्यक्ष किसी सभा का नियतकालीन अधिकारी होता है। सिद्धांततः अध्यक्ष में सभापति की भी अंतर्भाव हो जाता है। सभापति में अध्यक्ष का अंतर्भाव नहीं हो पाता। हर अध्यक्ष को सभापति कह सकते हैं पर हर सभापति को अध्यक्ष नहीं कह सकते। सभापति अपने पद पर तभी तक रह सकता है जब तक कि सभा की बैठक होती है, परंतु अध्यक्ष संस्था के नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि के बराबर बना रहता है। सभापति का चुनाव में उपस्थित लोग अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार करते हैं। सभापति का चुनाव संस्था के सदस्यों के नियमित मत से होता है। सम्राट, राजाओं का भी राजा सम्राट कहलाता है। राजा एक देश विशेष का स्वामी होता है। सहज, सहज का शाब्दिक अर्थ है स्वभावतः प्राप्त होने योग्य। जिस वस्तु को हम अपने स्वभाव से ही सिद्ध रखते हैं वह सहज कहते हैं। जैसे सहज, कृपण, सन, सुंदर, नीति, सरल। जब किसी वस्तु में कठिनाई नहीं पाई जाती तब उसे सरल कहते हैं। सहज में स्वाभाविकता होती है परंतु सरल में कठिनाई, शून्यता का भाव रहता है। जैसे यह प्रश्न तो बड़ा सरल है। सुगम, जब किसी विषय को बिना कष्ट के आनंद पूर्वक गमन करने का भाव दिखलाई जाता है तब उसको सुगम कहते हैं। जैसे भाई, अब आपके विचार से तह तक पहुंचना सुगम हो जाता है। सेवा, अपने से बड़ों की प्रेम पूर्वक चाकरी का नाम सेवा है। जैसे गुरु जी, यह सेवक सदा आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत है। शुश्रूषा, जब किसी बीमार की सेवा की जाती है तो उसे शुश्रूषा कहते हैं। जैसे रामेश्वरी बीमार है, उसकी शुश्रूषा का प्रबंध आपके ही करना होगा, ऐसा आपके पिताजी का आदेश है। स्वतंत्रता, स्वाधीनता स्वतंत्रता का शब्दार्थ है वह अवस्था जिसमें मनुष्य अपने ही शासन में रहे पर किसी दूसरे का किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो, वह स्वतंत्रता कहलाता है। स्वाधीनता, इसका शब्दार्थ है ऐसी स्थिति में जिसमें कोई अपने ही अधीन रहे, दूसरे के नहीं। प्राय दोनों शब्दों में विशेष अंतर नहीं है पर स्वतंत्रता का प्रयोग व्यक्तियों के संबंध में और स्वाधीनता का प्रयोग देशों और राष्ट्रों के संबंध में होता है। स्वच्छ छंदता, स्वच्छंदता बहुत कुछ वही है जो स्वतंत्रता या स्वाधीनता में है पर स्वच्छंदता में अनिष्ट का भी संभावना हो सकती है, इससे दूसरे का अहित भी हो सकता है। संकोच, थोड़ी लज्जा या शर्म का भाव संकोच कहलाता है। क्षति, इसका अर्थ हानि होता है। क्षिति, इसका अर्थ पृथ्वी होता है। ज्ञान, किसी विषय को सम्यक रूपेण जानना ज्ञान है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य का ज्ञान सूक्ष्म जगत के लिए अधिक था। बुद्धि, मन की सम्यक वृत्ति का नाम बुद्धि है। जैसे बुढ़ापे में प्राय प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि सठिया जाती है। धी, विचारक शक्ति का नाम दी है, जैसे हे शक्तिमान मेरी शक्ति में वृद्धि कीजिए। मति, इच्छा करने के प्रयास का नाम मति है, जैसे कलाकार की मति बिगड़ गई है, पहले उसका समुचित उपचार होना चाहिए, फिर कला की बातें होंगी। अंतःकरण, बाहरी इंद्रियों से संबंध स्थापित होने पर हृदय का नाम अंतःकरण हो जाता है, जैसे जब तक बाहरी इंद्रियां शांत नहीं होती तब तक कि अंतर्ध्यान की ओर आप उन्मुख नहीं हो सकते। ज्ञान, ज्ञान का साधारण अर्थ है जानना, अनेक रूपों से जानी और समझी बातों के सामूहिक रूप का नाम ज्ञान है। किसी बात की वास्तविक पूर्ण जानकारी अथवा परिचय ही ज्ञान है। ज्ञान का सत्य होना और पूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा वह जानकारी मात्र होगी। ज्ञान ज्ञान इंद्रियों द्वारा बाहर से प्राप्त होती है और हमें उसे अर्जित करके अपने मन में संचित करते हैं। जानकारी, जानकारी का ज्ञान साधारण और हल्का रूप है। आरंभ में हमें किसी कला, विद्या या विषय की साधारण जानकारी होती है, फिर कुछ दिनों के सतत अध्ययन और अनुभव और अभ्यास आदि के बाद यह जानकारी ज्ञान का रूप ले लेती है। जानकारी अधूरी और असत्य भी हो सकती है तथा पूरी और सत्य भी। सूचना, सूचना का ज्ञान वह साधारण रूप है जो हमें यही दूसरों से कुछ सुनने, पुस्तकें और पत्र आदि पढ़ने से प्राप्त होते हैं। सूचना आवश्यकता पड़ने पर काम आती है। सूचनाओं का भंडार हमें सुविज्ञ बना देता है। सूचना में ज्ञान की भी गंभीरता नहीं होती। अनुभव, अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर बहुत से काम करते, देखते, समझते और सुनते हुए जो हम सुयोग्यता प्राप्त करते हैं उसे अनुभव कहते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त होते हैं। अनुभव व्यक्ति, जाति, देश, वर्ग, समाज आदि का भी होता है। अनुभव में प्रायोगिकता का पुट रहता है।